सिद्धार्थ ने आगे कहा, आप जानती हैं दादी, झलक ने ये सारा ड्रामा सिर्फ ओबेरॉय परिवार को नीचा दिखाने के लिए रचा है। दादी ने शुरू से ही इस लड़की पर सबसे ज्यादा विश्वास किया था, भरोसा किया था। लेकिन सच तो ये है कि गरीब बैकग्राउंड से आने के बाद पैसे की चमक दमक ऐसे लोगों को अंधा कर देती है। और आप जानती हैं, जिस खुराना परिवार ने इस लड़की को सहारा दिया, सपोर्ट दिया, और फिर इसने उसी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया, और इस झलक का इस्तेमाल किया मिस्टर मल्होत्रा ने, ताकि दिग्विजय मल्होत्रा वक्त आने पर अपने बेटे आरव मल्होत्रा का बदला ले सके। मैंने सारी चीजों के बारे में पता लगवा लिया है, और वैसे भी रिपोर्ट झूठी भी तैयार करवाई जा सकती है। और चलो मान भी लिया कि झलक आरव मल्होत्रा की बेटी है, लेकिन नैना ओबेरॉय के साथ जबरदस्ती हुई थी, और वैसे भी कोई औरत अपनी मर्जी से शादी करने के बाद किसी और मर्द के साथ अपनी मर्जी से कैसे सो सकती है। कुछ सालों बाद जब आरव ने नैना ओबेरॉय को ईशान ओबेरॉय के साथ खुशहाल देखा, उन्हें अपनी बेइज्जती याद आई जो नैना ने कॉलेज में उन्हें रिजेक्ट करके की थी। उसी का बदला उसने मिसेज ओबेरॉय से जबरदस्ती करके लिया। सिद्धार्थ की बातें सुनकर नैना का दिल थोड़ा सा हल्का फुल्का हो गया था कि कम से कम सिद्धार्थ तो उस पर यकीन कर रहा है, क्योंकि अब वे लोग समझ चुके थे कि उन्हें अपने परिवार को एक बार फिर समाज के सामने लेकर आना है, और उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ से होकर ही गुजरता है। अगर खुराना परिवार ओबेरॉय परिवार के साथ खड़ा हो जाएगा तो फिर किसी की हिम्मत नहीं रहेगी कि उनके ऊपर उंगली उठा सके, वरना पूरी मीडिया में और हर जगह वे लोग चर्चा का विषय बने हुए थे। ये बात नैना अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि पिछले 6 महीनों में उसे जो इज्जत मान सम्मान मिला था वो अब टूट चुका था। धोखेबाज मक्कार औरत कहकर उसे बदनाम किया जा रहा था। कितने पैसे उस पर खर्च किए गए थे, पॉलिटिकल लीडर की पार्टी में उसे असाइन कर लिया गया था, लेकिन अब एक ही झटके में झलक ने उसकी पूरी तरह से बेइज्जती कर दी थी। जिस जनता ने उसे मान सम्मान और प्यार दिया था, उसी ने उसके मुंह पर कलंक लगाकर उस पर हमला किया और उसे अस्पताल तक में एडमिट करवा दिया। तो कहीं ना कहीं इस वक्त सिद्धार्थ की बातें सुनकर उसे थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा था। तभी ईशान ने तुरंत नैना को कोहनी मारी और उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कर रही हो, जाओ, यही मौका है। अब जैसे ही ईशान का इशारा नैना को मिला, बिना देर किए नैना तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो उर्वशी खुराना के सामने हाथ जोड़कर बोली, पता नहीं उस लड़की ने ये सब कुछ कैसे किया। सच कहूं तो उस लड़की ने जब से पैदा हुई है मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। पहले तो उसने मेरी जिंदगी में आकर मुझे एक बहुत बड़ा कलंक, एक धब्बा दिया। काश वो लड़की पैदा ही नहीं हुई होती, लेकिन उस वक्त मैं 2 बच्चों की प्रेगनेंसी में थी, और अगर मेरी आकांक्षा ना होती तो मैं उसी वक्त अबॉर्शन करवा लेती। भला एक औरत एक बलात्कार की निशानी को कैसे रख सकती है। और मेरे केस में इतने सारे कॉम्प्लिकेशन आ गए थे कि आकांक्षा के बाद मैं फिर माँ नहीं बन सकती थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए मुझे उसे भी पैदा करना पड़ा। लेकिन वो मेरी जिंदगी का इतना बड़ा बदनुमा दाग निकलेगी, इतना बड़ा धब्बा बन जाएगी, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे नफरत है उस लड़की से, इतनी नफरत की कोई सोच भी नहीं सकता। ये कहते हुए नैना पूरी तरह से रो पड़ी और उर्वशी के सामने हाथ जोड़कर बोली, मिसेस खुराना, मैं जानती हूँ कि इन सब बातों से आपको कितना बड़ा धक्का लगा है, लेकिन प्लीज हमारी मदद कीजिए। हम गुनहगार नहीं हैं, हम विक्टिम हैं, हमें फंसाया गया है। उस लड़की ने चारों तरफ की बातों को देखकर ये पूरी की पूरी चाल चली है। उर्वशी खुराना उठने की कोशिश करने लगी। उन्होंने सिद्धार्थ की ओर देखा और फिर बोली, आप लोग परेशान मत होइए मिसेज ओबेरॉय, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वो लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है। हमारी जिंदगी में आकर हमारे ही बेटे का नाम छीनकर उसे क्या लगता है कि वो सब कुछ हासिल कर लेगी। हम भी देखते हैं कि कितने दिनों तक ये मल्होत्रा परिवार उसे पालता है। आखिरकार है तो वो एक नाजायज औलाद ही। अब हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। ये कहते हुए उर्वशी खुराना ने तुरंत अपना फोन निकाला और कुछ लोगों को कॉल करना शुरू कर दिया। अपने शब्दों में वो उन्हें सारी बात समझाने लगी। वहीं जैसे जैसे आकांक्षा, ईशान और नैना उर्फ उर्वशी खुराना की बातें सुन रहे थे, कहीं ना कहीं उनके चेहरों पर राहत साफ नजर आ रही थी। वहीं आकांक्षा ने अपनी आंखों में आए आंसुओं को थोड़ा सा और तेज कर दिया था और सिद्धार्थ का हाथ थामकर बोली थी, सिद्धार्थ, प्यार करने के अलावा मैंने कोई गलती नहीं की है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और शायद इसी की मुझे सजा मिल रही है। ये सुनकर सिद्धार्थ ने उसे थोड़ा सा गौर से देखा और उसके फटे कपड़े देखकर कहा, एक काम करो आकांक्षा, फटाफट से जाकर कपड़े चेंज कर लो, उस वीआईपी रूम में चली जाओ। पूरा हॉस्पिटल खुराना परिवार का ही था, इसीलिए देर न करते हुए आकांक्षा अब सीधा वीआईपी रूम में चली गई थी, जो कि सिद्धार्थ के लिए हमेशा से अवेलेबल रहा करता था। अब जैसे ही आकांक्षा वहां गई, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बिगड़ गए। उसने कमरे में रखे आईने में खुद को देखा। इस वक्त वो किसी भिखारी से कम नहीं लग रही थी। चेहरे पर दाग धब्बे और जगह जगह से फटे हुए कपड़ों के निशान, ये सब देखकर आकांक्षा अंदर ही अंदर गुस्से से भर उठी। हालांकि उसके पिता उसे लगातार समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उसे अपने कपड़े बदल लेने चाहिए, कपड़े कई जगह से फटे हुए थे, लेकिन वो पूरी तरह से गुस्से से तिलमिला उठी थी। सोचा था तू हमेशा के लिए चली गई है और मेरी जिंदगी आसान हो गई है, लेकिन तूने एक बार फिर मेरी जिंदगी में दखल दिया। तूने बहुत बड़ी गलती की है। अगर तुझे उस मल्होत्रा परिवार का साथ मिल गया था तो तुझे वहीं अपनी जिंदगी गुजार लेनी चाहिए थी, वापस लौटकर नहीं आना चाहिए था। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तुझे जिंदा छोड़ना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन अब बस बहुत हो चुका है। अब तेरे जीने का टाइम खत्म हो चुका है।
आकांक्षा गुस्से से कांपते हुए आईने में अपने चेहरे को देखते हुए लगातार बड़बड़ा रही थी। फिर वो सीधा वॉशरूम में गई और बेदर्दी से अपने सारे कपड़े उतारकर अलग कर दिए। शावर के नीचे खड़ी होकर वो अपने शरीर को बार बार रगड़कर धोने लगी। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था मानो लोगों की गंदी नजरें उसके शरीर पर चिपक गई हों, और जिस तरह से झलक ने उसे कहा था कि उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो सुसाइड कर ले या किसी कोठे पर बैठ जाए। उसे याद करके उसके गुस्से और नफरत की कोई सीमा नहीं रह गई थी। उसका खून खौल रहा था। काफी देर तक नहाने के बाद खुद को रगड़ रगड़ कर साफ करने के बाद उसने सिद्धार्थ के वार्डरोब में से ही उसके कुछ कपड़े पहन लिए, क्योंकि सिद्धार्थ के रूम में हमेशा उसके कपड़े अवेलेबल रहते थे। अब आकांक्षा ने सिद्धार्थ के कपड़ों को छूते हुए उसकी खुशबू को महसूस किया और सोचने लगी, अगर सिद्धार्थ मेरे साथ है तो मैं हारकर भी जीत गई हूँ। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई, लेकिन उसे पता था कि अभी उसे कुछ दिनों तक मासूम बनने का नाटक करना है, इसलिए उसने तुरंत अपने चेहरे पर मायूसी ला ली। सिद्धार्थ के बड़े बड़े कपड़े पहनकर, जो उस पर काफी ढीले लग रहे थे, वो तुरंत ही वहां से बाहर आ गई। वहीं दूसरी ओर झलक सीधे मल्होत्रा मेंशन पहुंच गई थी। आज हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ था वो एक एक करके उसके दिमाग में घूमने लगा था। झलक के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। उसने अपने लंबे नाखूनों को अपनी हिस्किन में गड़ा लिया था, लेकिन उसे दर्द का कोई एहसास नहीं हुआ। सिद्धार्थ खुराना के शब्द उसके दिल पर कैंची की तरह चल रहे थे। वहीं अनामिका ने जैसे ही झलक को देखा, वो तुरंत उसके पास आई और बोली, क्या हाल है दुश्मनों का? दुश्मनों के पास गई थी या नहीं? क्या हुआ वहां?
जैसे ही ये सवाल पूछा गया, झलक ने अपनी लाल आंखों से अनामिका को देखा। अनामिका को तुरंत समझ आ गया कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तभी दादाजी, आरव, स्नेहा और सौरभ भी झलक के आसपास आकर खड़े हो गए और बोले, क्या बात है बेटा, इतना गुस्से में क्यों लग रही हो? बोलो ना, क्या हुआ? तभी झलक ने खुद को थोड़ा सा शांत किया और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ भी नहीं हुआ है, हमें सिर्फ और सिर्फ शादी में जाने की तैयारी करनी है। अभी हम बैंगलोर वापस में ही जाएंगे, हम यहीं रुकेंगे, और वैसे भी हम यहाँ से सिद्धार्थ खुराना और आकांक्षा ओबेरॉय की शादी के बाद ही जाएंगे, क्योंकि अब मैं दिल से चाहती हूँ कि उनकी शादी हो, और शादी के बाद सिद्धार्थ खुराना को मैं एक स्पेशल तोहफा देना चाहती हूँ, तो वो तोहफा देना तो बनता है ना दादाजी? अब जैसे ही झलक ने अचानक खुद को शांत करके ये कहा, दादाजी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन अनामिका तुरंत ही बोली, ये बताओ कि अस्पताल में क्या हुआ? तुम इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों हो? क्या किया उसने? क्या उसने कुछ कहा? तभी झलक ने जल्दी से कहा, उसने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ और सिर्फ आकांक्षा से शादी करना चाहता है।